Today I want to share something on how God leads his people.
आज के दिन मैं ये बताना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को चलाता है.
It is an unspeakable privilege if you remember and when you think and meditate how God is interested in our welfare, our destiny.
और ये एक वर्णन के बाहर है कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें चलाता है और जिस अद्भुत तरीके से जो वो चलाता है.
और थ्रू द बाइबल वी कैन सी विद ग्रेट केयर गॉड लीडिंग हिज पीपल.
और हम देखते हैं कि वचन में कि कितना ही बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल के परमेश्वर अपने लोगों को चलाता है.
वन रिमार्केबल एग्जांपल वी कैन सी इन द ओल्ड टेस्टामेंट एज ए पिक्चर.
और एक अच्छा एक उदाहरण जो है हम पुराने नियम में एक चित्र के रूप में देख सकते हैं.
व्हेन द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल केम आउट ऑफ Egypt and they were being led to the promised land.
और जैसे कि जो लोग मिस्र से बाहर आए, जो परमेश्वर की संतान जो मिस्र से बाहर आकर के कनान के तरफ गए.
It is in a way represent our earthly life, like sojourners we live. It in a way our life can be compared to the life of the Jews when they were that transition and transit time towards the promised land.
Hamara jeevan usi prakar se hum tulna kar sakte hain jaise wo log wo jo yahudi log wahan se bahar nikal ke aaye wahi usi saman hum hamare jeevan ko bhi tol sakte hain.
So I want to read a verse from Exodus chapter 13:21-22. Exodus chapter 13:21-22.
Nirgaman ka 13va adhyay 21 aur 22.
The Lord was going before them in a pillar of cloud by day to lead them on the way, and in a pillar of fire by night to give them light that they might travel day and by night. He did not take away the pillar of cloud by day nor the pillar of fire by night from before the people.
हम यहाँ पे यही पढ़ते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को चला लेके जा रहा था. एक बादल के समान वो छाया था रात में और 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 रोशनी भी दे करके उन्हें चला के लेके जा रहा था उस मरुभूमि में.
कैन वी पिक्चर दैट ए क्लाउड वेरी विजिबल क्लाउड सीइंग वी कैन सी दैट देयर इज नो एम्बिग्युटी इज वेरी क्लियर बिफोर एवरीवन.
उस बादल को हम देख सकते हैं कि कैसा एकदम साफ था और कैसे वो लोग देख सकते थे और कैसे उसकी उसके सहारे से वो चल के जा रहे थे.
एंड द गॉड वाज द लॉर्ड वाज लीडिंग देम गोइंग बिफोर देम और लीडिंग देम फ्रॉम द फ्रंट.
और परमेश्वर जो है वो उन्हें चला के लेके जा रहा था और आगे की तरफ वो बढ़ रहा था.
सो इफ यू थिंक अबाउट हाउ इट वर्क्स इट इज लाइक व्हेन द क्लाउड इज स्टार्ट मूविंग दे विल स्टार्ट मूविंग.
और जैसा बादल आगे जा रहा था वैसे ही ये लोग भी उसके पीछे पीछे चलते थे.
व्हेन द क्लाउड हॉल्ट्स they understand that this God's plan to wait there for a while.
aur jaise wo badal ruk jata tha to wo log ye samajhte the ki parmeshwar ki ye yojana hai ki yahan pe khada yahan pe rehna hai.
so long as the cloud of God is moving they will keep on moving.
aur jaise badal aage aage chalta rehta tha waise wo log chalte the.
in a particular place when a cloud stop they also stand still, they don't travel.
aur jaise badal ruk jata tha to bhi wahi pe ruk jate the, aage nahi badhte the.
and can you think sometime and there is no warning when the cloud will start moving.
aur socho ki koi chetavani nahi hai ki kab badal aage jayegi.
sometimes the stay is very short in a particular place, sometimes very prolonged.
aur kabhi kabhi rukna thode samay ke liye hota tha thoda aur kabhi kabhi aisa hota tha bahut lambi samay tak rehna padta.
so you can understand that people's heart is always they are at rest, they know they have that assurance sense of security that God is leading us, so I need not be worried about anxious about anything where I am going.
aur wo log chintit nahi thi, bahut hi parmeshwar mein aaram lekar ke apne yatra ko badhate the.
the only thing I should be watching when the cloud of God is moving.
aur ek hi cheez unhe dekhna tha ki kab wo badal aage badh raha hai ya nahi badh raha, usko dhyan rakhna tha.
it can happen sometime the cloud will stay in a particular place for weeks, months, maybe even years.
aur kabhi kabhi aisa hota badal wo ek jagah mein kafi samay tak ho sakta hai, mahina bhar ho sakta hai, saal bhar bhi wahi pe khada rehta tha.
so they instead of becoming a restless, they even if some years or some months prolonged, they just wait.
और वो लोग चिंतित नहीं थे, वो लोग रुके रहे और वो रुक करके उस बादल जैसा जाता उस वैसे वो चलते थे.
You can understand if you are in a particular place for some time, tendency what will I will start tendency to settle down.
और कभी हम देखते हैं कि योजना कर रहे थे एक जगह में अगर रुकना है तो हम सोचते हैं कि यहीं पे हम अपना बसेरा कर लें.
When you know they used to live in tents, thought can why can't I make a little more permanent tent.
और जैसे कि वो लोग तंबू में रहते थे ये रह सकते थे ये कह सकते थे कि थोड़ा बड़ा करके और वहीं पे रह जाओ.
We thinking they would start a little bit of planting or some kitchen gardens etc.
और वो ये भी सोच सकते हैं कि थोड़ा सा गार्डन बगीचा वगैरह बना ले पेड़ पौधा लगा ले चारों ओर.
द मोर लॉन्गर द स्टे दे विल टेंड टू बी सेटल डाउन दे विल बी हैप्पी दे आर यूज्ड टू द सराउंडिंग्स एवरीथिंग दे फील लाइक सेटल्ड देयर.
और जितना लंबे तक वहाँ पे रहे तो वो ऐसा अनुभव आ जाएगा कि वहीं पे हम रह जाए और यहाँ से नहीं हटे.
बट एंड दे स्टार्टेड एंजॉयिंग द थिंग्स अवेलेबल अराउंड देम.
और वो वहाँ के चारों ओर से जो चीज़ें अच्छा लगता था लुभाने वाला तो उनमें उसमें आनंद उठाते थे.
एंड सडनली द क्लाउड स्टार्टेड वन डे मूविंग.
और अचानक से वो बादल है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है.
दे कैन नॉट नो आई डोंट वांट टू गो दे लीव एवरीथिंग एंड दे स्टार्ट मूविंग अलोंग विद द क्लाउड.
और वो वहीं पे अपना मन को नहीं लगा सकते और सब कुछ छोड़ करके उस बादल के पीछे उन्हें चलना था.
बिकॉज इवन दो दे न्यू द थिंग्स अराउंड आर एंजॉयबल गुड थिंग्स व्हाट वी हैड डन दिस पीरियड आर गुड बट दे न्यू दैट गॉड हैज समथिंग स्टिल बेटर सो बेटर टू मूव अलोंग द क्लाउड.
और उनको पता था कि जो भी बगीचा और वहाँ पे सब आनंद की बात था लेकिन वो यही सोचे कि हाँ जैसा बादल चलता है उसके पीछे हमको आगे निकलना वही भलाई है.
सो दैट्स ए गुड पिक्चर हाउ गॉड लीड्स हिज पीपल.
और ये एक अच्छा एक चित्र है कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को चलाता है.
एंड समटाइम क्लाउड मे मूव वेरी स्विफ्टली द मॉर्निंग इट हॉल्ट्स एंड इवनिंग स्टार्ट मूविंग अगेन.
और एक बार ऐसे भी हो सकता है कि तुरंत वो बादल निकल जाता सवेरे रुक करके फिर तुरंत शाम में निकल जाता
है. इज द रिवर्स ऑफ नो आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रैवल दे थॉट क्लाउड स्टॉप्ड दे थॉट ओके गुड वी कैन रेस्ट हियर फॉर अ वीक.
और वो लोग ये नहीं सोचे कि अभी काफी समय तक हम चले यहाँ पे हम लोग हफ्ते भर रुकेंगे.
वी कैन लिटिल लेस अराउंड
और हम थोड़ा इधर उधर घूमेंगे थोड़ा सा आराम करेंगे.
बट आफ्टर व्यू क्लाउड स्टार्ट मूविंग अगेन
और कुछ घंटे के बाद फिर से वो बादल चलने लगा.
सो वी हैड टू पिक अप दे हैड टू पिक अप एवरीथिंग एंड रिज्यूम देयर जर्नी.
और उन्होंने अपना सब चीजों को लेकर के फिर वो अपना यात्रा को उनको आगे लेना था.
सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग वे हाउ गॉड लीड्स अस.
एक अद्भुत और चौंकने वाली बात है कैसे परमेश्वर अपने लोगों को चलाता है.
वी लर्न टू ट्रस्ट गॉड
और हम सीखते हैं कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना.
मेनी थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल.
बहुत से चीज जो है हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं रहता है.
बट देयर इज एन एक्साइटमेंट इन मूविंग अलोंग विद द क्लाउड ऑफ गॉड.
और एक उत्साहित बात है कि परमेश्वर के उस बादल के पीछे चलना.
बिकॉज गॉड टेक्स एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्निंग अस.
और क्योंकि परमेश्वर जो है हर एक जिम्मेदारी जो हमारा हमारे बारे में वो लेता है.
इन द ओल्ड टेस्टामेंट अगेन एक्सोडस अगेन देयर इज another thought about God's leading his people.
Aur ek bhag bhi hai nirgaman mein ki kaise apne logon ko parmeshwar chalata hai.
That is in Exodus chapter 33
aur wo hai 33 nirgaman ka 33va adhyay mein
verses 14 to 16
uska 14 se lekar ke 16 tak.
So in this verse God is saying that my presence, God is offering and confirming that my dear people, my presence will go with you.
Aur yahan pe parmeshwar jo hai aashwasan deta hai ki mera jo sangati tumhare sath bana rahega aur chalta rahega.
Exodus chapter 33 verse 14
uska 14va adhyay mein.
And he said, God is saying, my presence shall go with you and aur, I will give you rest.
और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा.
दिस अ वेरी रिमार्केबल प्रॉमिस ऑफ गॉड.
और ये एक बहुत ही एक अच्छा वायदा है परमेश्वर का
टू हिज चिल्ड्रन
उसके बच्चों के
लिए. बट गॉड इज टेलिंग ईच वन ऑफ अस दैट माय सन माय डॉटर माय प्रेजेंस विल गो विद यू.
यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मेरा बेटी मेरा बेटा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा.
एंड not only that I will take you to rest
aur main tumhe aaram dunga.
I'll take you to a place of rest
aur main tumhe aaram दायक जगह में लेके जाऊंगा।
So think about, can you, are we welcoming, if God is promising something, as if we hear that, are we willing to welcome that, embrace that, or we think that, no, Lord, I want little control, I want it to be a part of my control in my hand, I want to go when in my time, in my way.
और जब परमेश्वर ऐसा एक वायदा देता है, क्या हम उसे स्वीकार करते हैं क्या, या हम आप परमेश्वर से ये कहते हैं कि मैं मेरे मर्जी से और मेरे बुद्धि के अनुसार मैं चलना चाहता हूँ।
बट वी कैन सी हाउ मोसेस रिस्पोंडेड,
और हम देखते हैं कि कैसे वो तुरंत उसके ऊपर
वेरी वंडरफुल वे मोसेस रिस्पोंडेड,
किस तरीके से मूसा जो है तुरंत उस आज्ञा का पालन किया।
दैट्स इन वर्स 15, देन ही सेड टू हिम, इफ your presence does not go with us, please do not lead us from here.
Oh, yahan pe kehta agar tumhara sangati hamare sath nahi hai parmeshwar to hame yahan hame aage mat leke jana.
This is a prayer, dear brothers and sisters, we all can make.
Ye ek prarthna hum log sab log kar sakte hain.
Lord, whatever I am doing,
jo bhi main kar raha hu,
wherever I am going,
jahan bhi main ja raha hu,
if I am not assured of your presence in my life,
agar परमेश्वर का संगति मेरे साथ नहीं है,
प्लीज डू नॉट अलाउ मी टू गो फ्रॉम दिस प्लेस,
मुझे यहाँ से हटने की आज्ञा मत देना,
प्लीज डू नॉट अलाउ मी टू मेक वन स्टेप फॉरवर्ड,
मुझे आगे एक कदम भी बढ़ाने मत देना।
दैट्स व्हाट मोसेस प्रेड,
यही प्रार्थना मूसा ने किया।
इफ योर प्रेजेंस डस नॉट गो विद अस, डू नॉट लीड अस फ्रॉम हियर,
क्योंकि अगर तेरा संगति हमारे साथ नहीं है, हमें यहाँ से आगे मत लेके चला,
यर्निंग एंड डिजायर इन आवर हार्ट एंड ए साइलेंट प्रेयर इन आवर लाइफ, व्हेनेवर वी मेक न्यू डिसीजंस एंड समथिंग न्यू थिंग कम ऑन आवर वे, डू वी प्रे लाइक दैट,
यही इच्छा हमें रखना है, प्रार्थना करना है, जब भी कुछ नए बात है, नए विषय है, वो क्या हम इस तरीके से हम प्रार्थना में रखते हैं क्या?
Lord, I want to make forward, I want to make steps only if it is your will, only if your presence will be there, and I am blessed with your presence, then only I want to go ahead.
खाली अगर आप प्रभु आपका इच्छा है तो मैं आगे कदम बढ़ाना चाहता हूँ, आगे मैं तब जाना चाहता हूँ जब आपका इच्छा और आपका आशीष है।
That is a good way of committing ourselves to the Lord's hands.
और एक बहुत अच्छी तरीके से हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में हम सौंप सकते हैं।
Not only that, in this passage, again a very important thing Moses is telling.
और एक बहुत ही मुख्य बात जो है मूसा यहाँ पे कहता है।
He is telling what differentiates someone who is a child of God and someone who is not.
और क्या जो जो बात अलग है जो परमेश्वर के जो बच्चे हैं और जो परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं।
Verse 16.
16वां अध्याय में वचन में लिखा है।
Exodus 33:16.
33 का 16 में।
For how can it be known that I have found favor in your sight, and I and your people? Is it not by you are going with us so that we and your people may be distinguished from all other people who are upon the face of the earth.
यहाँ पे वही कहता है कि मैं कैसा अंतर कर सकता हूँ कि तेरा जो आशीष मेरे साथ है और जो लोग तेरे साथ नहीं है उनके ऊपर है या नहीं है।
So there's a distinguishing thing for the children of God.
यहाँ पे एक अलग बात है अपने बच्चों के लिए परमेश्वर रखा है।
दैट इज द विथ गॉड्स चिल्ड्रन गॉड लीड्स द,
क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को वो चलाता है।
दैट इज व्हाट इज डिस्टिंग्विशिंग देम फ्रॉम अदर्स,
यही चीज है, यही अंतर है दूसरों से।
सो दिस समथिंग विच वी कैन मेडिटेट,
और ये इसके ऊपर हम ध्यान कर सकते हैं।
समथिंग डिस्टिंग्विशिंग माय लाइफ फ्रॉम अदर्स इज गॉड लीड्स मी,
एक अलग बात मेरे जीवन में ये है कि परमेश्वर मुझे चला रहा है।
एंड ही गाइड्स मी,
और वो मुझे रास्ता दिखाता है।
दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट मी फ्रॉम अदर्स,
दूसरों से मेरा यही अंतर है कि किस तरीके से परमेश्वर मुझे चलाता है।
वी कैन सी इन मेनी पैसेजेस फ्रॉम द बाइबल, वी कैन सी हाउ गॉड टेक्स इनिशिएटिव एंड इंटरेस्ट इन revealing his way and in guiding his people.
और हम देखते हैं काफी जगह में किस प्रकार से परमेश्वर अपने रास्ता को प्रकट करता है और किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को चलाता है।
Not vaguely but so clearly.
और ऐसा ही नहीं लेकिन एकदम साफ तरीके से परमेश्वर अपने लोगों को चला लेके जाता है।
Psalm 32 verse 8.
और भजन संहिता 32 का 8.
Psalm 32 verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go.
मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा और सिखाऊंगा कि किस रास्ते से तुम्हें जाना है।
And I'll counsel you with my upon you.
और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे जाना है।
See how in specific terms God is offering to help us.
और हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारी सहायता करने को तैयार है.
God is telling that I will instruct you.
और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा.
And I will teach you.
और मैं तुम्हें सिखाऊंगा.
In the way which you should go.
और उस रास्ता में जैसे जिस रास्ता में तुम्हें जाना है.
Speak about it. It is not a vague guidance.
और ये एक साधारण तरीके से दिखाने वाली रास्ता है, चलाने वाला रास्ता नहीं है.
Very specific instruction and teaching.
ये एक बहुत साफ तरीके से दिया गया एक आज्ञा है और दिखाया गया एक रास्ता
है. In each situation, each events in our life.
हर एक परिस्थिति जो हमारे जीवन में आता है.
नॉट ओनली दैट, आई विल काउंसल यू विद माय आई अपॉन यू.
और यहाँ पे वो ये कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा और मेरा आंख तुम्हारे ऊपर लगी रहेगी.
थिंक अबाउट दैट सेफ्टी व्हेन गॉड्स आई इज वाचिंग ओवर अस एंड लीडिंग अस एंड इंश्योरिंग दैट वी रीच what God has planned for us.
सोचो कि परमेश्वर का आंख जब हमारे ऊपर लगा रहता है और हम सही दिशा पे सही जगह पे जब हम पहुंचते हैं.
बट वी कैन ऑल एंजॉय दिस to the extent we trust and we receive in our life.
और ये चीजों को हम इसका आनंद उठा सकते हैं जब तक हम उस भरोसा करते हैं और जब तक हम इस चीजों को मानते हैं.
Again in Isaiah chapter 58.
Isaiah का 58
is something personally God something which God gave me.
एक व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर ने मुझे दिया है.
Sometime back Isaiah chapter 58 verse 11.
Isaiah का 58 का 11वां वचन.
And the Lord will continually guide you and satisfy your desire in scorched places and give you strength to your bones and you will be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail.
यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें चलाऊंगा और ऐसे जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ पे आपको कोई तकलीफ नहीं होगा और आप एक ऐसे बगीचा बने रहेंगे जहाँ पे जैसा कि सौता के जैसा जहाँ पे सौता है उस समान आप बने रहोगे.
It is especially the point that the Lord will guide you continually.
यहाँ पे जो वचन में ऐसा है कि परमेश्वर कहता है कि लगातार वो तुम्हारी सहायता करेगा.
सो इट इज़ नॉट ऑफ एंड ऑन ओकेशनली.
और ऐसा नहीं कि थोड़े समय के लिए या समय समय पर.
गॉड्स इंटरेस्ट इज गाइड अस कंटिन्यूअली विदाउट ब्रेक.
और यहाँ पे कहता है कि लगातार वो संभालेगा और वहाँ पे कोई बाधा नहीं आएगी.
व्हेन वी थिंक दैट थिंग्स आर doing going good when things are hard every time God wants us to guide you continually. He takes the responsibility.
और जब चीजें अच्छे हैं हर एक समय में परमेश्वर हमेशा अच्छे तरीके से चला करके लेके जाना चाहता है.
We have heard probably a little story two steps. I heard this, you know, someone was a dream they saw in the seaside there were two pairs of steps where it was visible.
हमने वो एक चित्र ये देखा है कि जहाँ पे दो कदम आगे आगे चलने का जो एक एक कहानी है जो दो कदम आगे चलते हैं.
He is saying that one pair of steps is God's and the other pair of steps on his own.
और वहाँ पे जो एक कदम जो है वो परमेश्वर का है, दूसरा कदम जो है वो उसका था.
And he was seeing that a particular when he was observing that you know, in the sand of the seaside. Seashore. You see these two sets of footprints.
और दो लोगों के कदम उस समुद्र के किनारे वो देखता है, लगातार है दो कदम.
He is seeing that a particularly hard patch of history. He is just seeing one pair of feet.
और एक समय के बाद वो ऐसा देखता है कि कुछ समय के बाद सिर्फ एक ही व्यक्ति का कदम वहाँ पे दिखाई देता है.
And this man felt very sad.
और वो व्यक्ति जो है बहुत ही उदास हो गया.
What he is thinking is during that very difficult time in my life, I am just seeing one pair. God left me. I am not seeing the other pair of feet.
और जो कठिन परिस्थिति वो उसने ऐसा सोचा कि कठिन परिस्थिति के समय में परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं सिर्फ एक ही कदम दिखाई दे रहा है मुझे.
And he complained to God, Lord, why did you do that? When that very difficult time phase in my life, why did you leave me?
और फिर वो परमेश्वर से ये कहा कि उस समय में जब कठिन परिस्थिति में परमेश्वर आपने क्यों मुझे छोड़ दिया?
But God answered him that my son, that pair of feet what you are seeing, that footprint is not your feet, it is my feet.
और परमेश्वर ऐसा कहता है कि मेरे बेटे जो कदम आप देख रहे हो वो आपका नहीं, वो मेरा है.
You thought that you left me, but it is mine.
और आपने सोचा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन नहीं, मैं वो मेरा है।
Then he asked, I am not seeing my friend, then where am I?
और फिर उसने कहा कि मेरा खदम कहाँ पे, वो दिखाई नहीं दे रहा है।
And he said, the story said God told him, I was carrying you at that time.
और परमेश्वर ने ऐसा कहा, उस समय में मैं तुम्हें उठा के ले चल रहा था।
I knew that you cannot make it, so I was carrying you in my arms. That's why you are not seeing your footprints.
क्योंकि मैं जानता था कि तुम नहीं कर सकते, इसलिए मुझे तुम्हें उठाना पड़ा और मैं उठा के चला।
So that's a little interesting how God is interested to continually guide us.
और ये एक 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 ये बात है कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें लगातार चलाना चाहता है।
So very, I just want to share three principles in how God guides us.
मैं तीन सिद्धांत के बारे में बताना चाहता हूँ किस प्रकार से परमेश्वर हमें चलाना चाहता है।
I sometime back many years back read something like this.
और मैंने कुछ समय पहले ऐसे कुछ चीजों को पढ़ा।
In a very treacherous sea when there was a harbor.
और एक एक मुश्किल समय में समुद्र में समुद्र के बीच में
there is harbor
जहाँ पे दक्का है, दक्का
sea is very treacherous but it is very difficult to approach that harbor through this treacherous sea.
और जब जब तूफान के समय में वो तूफान के समय में तभी बहुत ही मुश्किल होता है कि जो धक्के के तरफ जाने के लिए।
सो पीपल हैड अरेंज्ड थ्री लाइट्स
और तभी लोगों ने तीन दीपक को दीपक तैयार किए।
सो व्हेन शिप्स आर अप्रोचिंग द हार्बर
जब जब जो जहाज है जो धक्के के तरफ जब आने लगता है
ऑल द थ्री लाइट्स अलाइंड वन बिहाइंड द अदर दे सी इन वन लाइन ऑल द थ्री और all the three lights.
और वो जो दीपक जो है जो लाइट जो है वो एक के पीछे एक लगा रहता है।
सो इफ यू ट्रैवल लाइक दैट देन इट इज सेफ।
और जब आप उस तरीके से जब वो जैसा वो दिखाई देता हो वैसा अगर हम चलते हैं तो आप सुरक्षित हैं।
सो ऑल द थ्री लाइट शुड बी वन बिहाइंड द अदर इन लाइन इट्स अलाइंड
और वो एक सीधा लाइन में रखा गया है, तीनों बत्ती जो है तीनों लाइन में रखा गया है।
ओनली दैट इज अ रूट दैट शिप शुड टेक
और वही रास्ता जो है वो जहाज को लेना है।
अदर रूट्स कैन वी सी थ्री लाइन बट इट्स ऑल थ्री नॉट अलाइंड इट कैन लीड टू एक्सीडेंट्स।
और अगर वो रास्ता अगर नहीं लिया अगर वो दीपक भी अगर सही तरीके से रखा गया तो कुछ भी दुर्घटना हो सकती है।
सो इन द सेम वे इन द बाइबल
और उसी तरह के से हम वचन में भी पढ़ते हैं।
There are three principles, very simple. I'm not saying
there are only three principles. बहुत ही साधारण तरीके से।
But I want to just bring out in simple term at least three principles.
मैं तीन सिद्धांत के बारे में बताना चाहता हूँ।
And when they are aligned, we know that God is guiding us.
और वो अगर सही तरीके से रखा गया है सीधे से तो परमेश्वर हमें चलाता है।
So one of that principle or one of that lighthouse we can say is The word of God.
और एक जो बत्ती है और जो सिद्धांत है पहला जो सिद्धांत है वो है परमेश्वर का वचन।
The scripture which God has given. The और spoken, जो written word which God has given.
और जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है जो परमेश्वर ने हमें प्रकट किया है।
God's leading will always be in line with this.
और परमेश्वर का जो चलाना जो बातें जो है इसके अनुसार ही होता है।
God will not do anything. In conflict with the scripture, what he spoke.
और इसके विरुद्ध में और जो उसने कहा है उसके विरुद्ध में वो कुछ भी नहीं करेगा।
So that is one light or lighthouse we should always look. What I am the step which I am making is it in conflict with God's word.
और ये एक बत्ती है जिसके तरफ हम देख सकते हैं और हमेशा हमें देखना है कि क्या इसके विरुद्ध में मैं कुछ कर रहा हूँ या मैं इसके जैसे ही मैं चल रहा हूँ।
So in the beginning only we see that a particular thing we are considering. We think that it's not in line with God's word. We need not think about it. Close the matter there.
और जो भी बातें अगर जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है वो फिर अगर आपको लगता है कि सही नहीं तो वहीं पे उसको खत्म कर देना है।
Don't follow that, pursue that route further.
और आगे हमें नहीं बढ़ना है।
Right at the first light, we need not even think about second light and third light coming in light because first light itself is not aligned. So don't follow that path.
पहले ही बत्ती में हम लोग उसको काटना है, आगे नहीं बढ़ना है जब आपको पता है कि सही नहीं है, उधर ही हमने रोकना है।
So this is an important thing we should always keep in our whenever we consider various options, different decisions in our life, we should always first thing we should check, acutely we should check I'm not saying we search over. We know when you read and verse heart is, word of God is now. We know is it we can ponder and consider whether it's in line with God or in conflict with God's word.
हम जब ऐसे एक परिस्थिति में पड़ जाते हैं जहाँ पे हमें जब हम सोचने लगते हैं तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं. अगर वो सही नहीं कि वहीं पे हमें छोड़ना है और उसे खत्म करना है.
For example, I'll tell you a practical example helpful for youngsters. And for all of us.
एक उदाहरण देना चाहता हूँ जिसमें सबका सबको लाभदायक होगा.
2 Corinthians 6:14.
2 Corinthians का 6:14 में लिखा है 14.
It says that do not be bound together with unbelievers.
और वहाँ पे लिखा है कि अविश्वासी के साथ बांधे मत रहो.
So do not be bound together with unbelievers.
और अविश्वासी के साथ आप बांधे मत रहो.
This is a scripture, word of God, God's plan for us.
ये परमेश्वर का वचन है और ये परमेश्वर का योजना है.
God does not want us to be bound together with unbelievers.
हम अविश्वासी के साथ हमें बंधा नहीं रखना है.
Difference is not talking about working together, being a colleague, being a friend. It's not talking about that.
और ये यहाँ पे ये नहीं बोलता है कि उनके साथ काम नहीं करना है क्योंकि और उनसे मिलना नहीं है, ऐसा नहीं है.
बट मोर इंटीमेट रिलेशनशिप लाइक कंसीडरिंग मैरिज एटसेट्रा.
और ये एक ऐसा एक रिश्ता है जो शादी के विषय में.
डू नॉट बी बाउंड टुगेदर विद अनबिलीवर्स.
और एक अविश्वासी के साथ हमें बंधा नहीं रहना है.
सपोज समवन हू क्लोज टू अस प्रपोजेस समवन वेरी गुड पर्सन यू नो वेरी एवरीथिंग इज गुड बट एन अनबिलीवर.
और समझो एक कोई जो एक अच्छा व्यक्ति है और वो प्रपोज करता है शादी के लिए और वो एक अविश्वासी है.
Do you think we have to pray about it? You have to fast and we pray about it, wait for it to know it is God's will.
क्या ऐसा लगता है कि हमें उसके लिए प्रार्थना करना है या हमें उसके लिए उपवास रहना है?
We don't have to even pray about it.
हमें उसके बारे में प्रार्थना भी नहीं करना है.
It is a declared will of God that do not be bound together with unbelievers.
परमेश्वर ने प्रकट किया हुआ है कि एक अविश्वासी के साथ हमें अपने आप को बांधना नहीं है, बंधा नहीं रहना.
We don't need to even discuss with anyone.
किसी के साथ हमें चर्चा भी नहीं करना, वहीं पे खत्म कर.
It's not in line with the one of the important lighthouse through which God leads me.
एक बहुत ही एक मुख्य एक बत्ती है वहाँ पे, हमें वहीं पे रुकना है जहाँ पे परमेश्वर चलाता है, कहता है कि हमें आगे नहीं बढ़ना.
So it's just an example, many things.
एक उदाहरण है.
You can say. So it's always important to remember that any decision, any step we make, always seek in our heart, is it in conflict with God's word?
हर एक जब हम निर्णय लेते हैं करते हैं उसमें हम यही जानना है कि ये क्या ये परमेश्वर का इच्छा है या उसके वचन के अनुसार है या नहीं.
It will prevent us from many dangers.
और बहुत ही गंभीर परिस्थिति में या दुर्घटना में गिरने से हमें बचाएगा.
Even if to our intelligence, our logic, everything it is, we think that is a very ideal and useful, perfect. But if it's in conflict with God's word, don't go ahead with it.
अगर हमारे बुद्धि से और हमारे सोच विचार से हमें सब अच्छा और ठीक लगेगा, लेकिन अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार वो ठीक नहीं है, आगे नहीं जाना है, वहीं पे रुकना है.
This is a first light.
ये पहला बत्ती है.
A second light is our inner peace.
और दूसरा जो बत्ती है हमारे अंदर का जो शांति है.
Whenever God leads us, it is always accompanied by an inner rest and peace.
और जब परमेश्वर हमें चलाता है हमारे अंदर एक अलग सा शांति जो है परमेश्वर हमें देगा.
When there is a turmoil and unrest inside, when you consider a certain matter, that a clear indication that it is not for us.
जब अंदर के अंदर अगर हमारे अंदर बहुत ही अशांति है और हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसके मतलब ये है कि वो परमेश्वर का इच्छा नहीं है.
That is not the route which God wants me to pursue.
और ये हमें ये कहता है कि वो सही रास्ता नहीं है जो परमेश्वर चाहता है.
I am not finding rest in my spirit, so I will not make a step.
मेरे आत्मा में मैं वो शांति नहीं पा रहा हूँ, तो आगे मुझे नहीं जाना है.
In Philippians chapter 4 we read.
Philippians का 4 में हम पढ़ते हैं.
Philippians chapter 4 verse 6 and 7.
Philippians 4 का 6 और 7.
Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with a thanksgiving let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all comprehension will guard your hearts and minds in Christ Jesus.
और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि आप चिंतित मत हो जाओ कुछ विषय के बारे में, हमें वो प्रार्थना में रखना है ताकि परमेश्वर का शांति जो है हमारे ऊपर बना रहे.
सो पीस ऑफ गॉड विच सरपासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग इज ए लाइट फॉर अस.
और परमेश्वर की शांति जो है हमारा हमारे ध्यान के बाहर है और वो एक बत्ती के समान है
assuring us about God's leading.
और वो हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर किस तरह हमें चलाना चाहता
है. And in a particular is the first lighthouse and second lighthouse is aligned, we can see things are I am getting some direction.
और जो पहला जो बत्ती और दूसरा जो बत्ती जब हम उसके अनुसार जाते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर का योजना है.
इट इज इन लाइन विद द वर्ड ऑफ गॉड एंड आई इवन फील अ रस्ट इन माय स्पिरिट.
ये परमेश्वर का वचन के अनुसार है और मेरे अंदर वो शांति भी है.
टू लाइट्स आर अलाइंड.
अभी ये दो बत्ती सही तरीके से.
एंड देयर इज अ थर्ड लाइट, एट लीस्ट अ थर्ड वन मोर लाइट.
और तीसरा जो बत्ती है
दैट इज सर्कमस्टेंसेस व्हिच आर आउटसाइड आवर कंट्रोल.
और वो बातें हैं जो हमारी हमारे कंट्रोल के बाहर है.
सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग आवर लाइफ व्हिच इज नॉट वी कैन नॉट कंट्रोल इट.
और वो विषय जो हमारे चारों ओर है जिसके ऊपर हम काबू नहीं कर सकते.
गॉड कंट्रोल्स दैट.
वो परमेश्वर उसके ऊपर काबू रखता
है. अलोंग विद द वर्ड ऑफ गॉड अलोंग विद माय इनर पीस गॉड हैज कंट्रोल्ड माय सर्कमस्टेंसेस व्हिच आर बियॉन्ड माय कंट्रोल. देन that is a clear direction indication that it is all aligned with God's leading.
और परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर का वो शांति जो मेरे अंदर जो दिया है और बाकी जो परिस्थिति मेरे चारों ओर है जो मेरे कंट्रोल के बाहर और परमेश्वर ने उसे अपने काबू में रखा है तो ये जानना है कि परमेश्वर सही दिशा में लेके जा रहा है.
Again, there's an interesting interesting God's guidance in the Bible. I just want to quickly share in when God connected Rebecca to Isaac.
और एक अच्छा एक उदाहरण है जो हम वचन में देख सकते हैं कि रेबेका का जो मिलन आइज़क के साथ परमेश्वर ने किया.
When Isaac's father Abraham sent their servant Eliezer to distant place and look for a wife.
और जब इसाक का जो पिताजी एलियाजर को जब भेजा था जाके उसके लिए एक पत्नी ढूंढने के लिए.
इस रिटर्न जेनेसिस चैप्टर 24 वर्सेस 12 टू 15
और उत्पत्ति के 24वां अध्याय 12 से लेके 15 तक में लिखा है.
सो एलियाजर वेंट टू दैट स्ट्रेंज प्लेस अननोन टू हिम. ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू.
और वो एक अनजानी जगह पे चला गया. उसको पता भी नहीं था कि क्या करना है.
He did not know how to find a girl suitable for his master's son.
और उसको पता भी नहीं था कि किस प्रकार से एक लड़की को देखना है उसके स्वामी की बेटे के लिए.
But he prayed.
लेकिन उसने प्रार्थना किया.
Let us see his prayer in verses 14 onwards. Genesis chapter 24, 14 onwards.
14 से लेके उसका प्रार्थना को हम देख सकते हैं.
And 13 onwards. Behold, I am standing by the spring, and the daughters of the men of the city are coming out to draw water. He is seeing many girls coming, but
और वहाँ पे बहुत ही स्त्रियों को आते हुए देखता है.
But he has no idea how to select the bride suitable for Isaac.
वो एक सरी स्त्री को नहीं देख पा रहा कि किस प्रकार से चुनना है अपना आइज़क के लिए.
So he prayed in verse 14. Now may it be that the girl to whom I say, please let down your jar so that I may drink, and she answers in turn, drink, I will water your camels also. May she be the one whom you have appointed for your servant Isaac.
यहाँ पे वो ये प्रार्थना करता है कि इसमें से कोई जो स्त्री जो जब मैं पानी पूछूँ वो मुझे और मेरे ऊँटों को भी उस पानी दे. अगर ऐसा वो कहते वही आपका चुना हुआ स्त्री होगा अपना Isaac के लिए.
So as he don't know how to do, he is leaving everything in God's hands.
और ये सब कुछ जो है वो परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है.
So I will ask this girl this question and she reply like that, then I will assume that she is the girl you have chosen.
और मैं जब स्त्री से मैं बात करूंगा बताऊंगा तो तब जैसे वो जवाब देगा तब जाकर के मैं ये आपकी योजना समझूंगा.
And it's written that verse 15, before he finished speaking, behold, Rebecca, who was born to Bethuel the son of Milcah, the wife of Abraham's brother Nahor, came out with her jar to the shoulder.
और फिर हम देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि रेबेका आती है पानी का गड़ा लेकर के.
So Rebecca is appearing not knowing what is happening, but
और उसको पता नहीं कि क्या हो रही है लेकिन वो हो रहा है वो पानी की गड़ा लेके आती है.
So Eliezer asked this question and Rebecca replied in the same way Eliezer prayed.
और जैसा Eliezer ने प्रार्थना किया वैसे ही उत्तर Rebecca ने उसको दिया.
So this is a situation where things are, God is setting things beyond our control in our circumstances.
और इस प्रकार से जो परिस्थिति हमारे हाथों के बाहर है उसके ऊपर परमेश्वर का कंट्रोल है, परमेश्वर के काबू में वर्तता है.
This is a third light house which we can look for.
ये एक तीसरा बत्ती है जिसको हम देख सकते हैं.
So when all these three lights are in line, we can be fairly sure that God is leading me into this path. And none of us are cleverer, more cleverer than God.
हम परमेश्वर से बुद्धिशाली नहीं हैं.
And God knows many things. The end of things before the beginning.
परमेश्वर अंत को जानता है शुरुआत से पहले.
We only know what is happening now. We don't know what is happening tomorrow.
हम सिर्फ यही जानते हैं अभी क्या घट रही है उसी बात को हम जानते हैं. कल की बात को हम नहीं जानते.
So let us see continue. Let this be a habit in our life to seeking God's leading in our life.
हमारा ये व्यवहार हो कि हम लगातार परमेश्वर का इच्छा क्या है वो जाने उसके अनुसार हम चले.
One of that third light, I remember something when I were very young, 18-19 years, when I was very new believer.
जब मैं बहुत ही छोटा था बचपन में, जब 18 साल का, जब एक नया विश्वासी था, उस बात को याद करता
हूँ. Something I read in a book, just a small expression.
वो एक जो किताब में मैंने पढ़ा है.
For years it remained in me.
और मेरे अंदर काफी साल तक मेरे अंदर रहा.
It is like that. When you are seeking God's guidance and suppose door is closed in front of you.
और जब आप परमेश्वर का इच्छा के अनुसार आप चल रहे हो और आगे आपका दरवाजा बंद है.
Take it as an indication that God not want you to make further progress. Be stop. Don't go forward.
और ये जान लो कि तुम्हें और आगे नहीं जाना है, वहीं पे रुकना है.
But if you are so determined, somehow I'll go.
और अगर आपने ये ठान लिया है कि किसी भी तरह मुझे आगे जाना है.
You may find there is a ventilator. I don't know. Ventilator something like this. Meant for air passage. Normally it is kept like this above the door.
और ऐसा एक वेंटिलेटर जो खुला एक जगह है कि और आगे आगे है.
So don't try to find your way through the ventilator. Door is closed. So but I will go still ahead. I'll enter through the ventilator.
और ये मत अपने ये मत सोचो कि दरवाजा बंद है तो मैं जो दरवाजे के ऊपर जो छोटा रास्ता है उसको लेकर के मैं उसके अंदर से बाहर निकलूंगा.
So that should not be our head. Means I am self-will. I want to go. Whether God leads me or not, I don't care. I want to go ahead.
मैंने जानना चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे चलाना चाहता है नहीं चलाना चाहता है, मुझे उसके परवाह नहीं है, ऐसे हम नहीं सोचें.
May God really help us. It's a wonderful thing to when we think if you are seeking, we have a spirit of seeking God's leading in our life in every day.
और परमेश्वर का जब हम खोज करते हैं, परमेश्वर का रास्ता जब खोज करते हैं, यह हमारे लिए आनंद की बात होगा.
It is God does not want that to be an occasional thing, but that should be our way of life.
और ये कभी कभी के लिए नहीं है, लेकिन उस हमारा यही होना चाहिए, लगातार हम उसकी खोज में रहें.
We continually seek God's leading.
और लगातार उसके उसका जो रास्ता के हम खोज करें.
Because God is interested in guiding me continually.
और परमेश्वर यही चाहता है कि लगातार हमें वो चलाए.
And that is the best and thing I can do.
और यही एक अच्छा काम जो मैं कर सकता हूँ.
इन प्रोवर्ब्स 3
निर्गमन का 3
नीतिवचन
का 3 सॉरी
Verse 6, it says, In all your ways acknowledge him, and he will make your path straight.
और सब जो रास्ता है उससे हम अंगीकार के वो रास्ता बना के देगा.
So if I need to have that habit of acknowledging God in every way.
और हर एक रास्ते में जब हम परमेश्वर से मांगते हैं या अंगीकार करते हैं बताते हैं.
So that is when I can find God's leading.
और वहाँ पे मैं परमेश्वर का रास्ता में जान पाऊँगा.
If I don't acknowledge God, if I don't desire to see God in every way, then I cannot find His will.
और मैं परमेश्वर की इच्छा नहीं जानूंगा और उसके अनुसार मैं नहीं मांगूंगा तो उसका इच्छा क्या है मैं नहीं जान पाऊँगा.
I remember I heard somewhere that there was one man who used to always regularly find God's will.
एक व्यक्ति था जो लगातार परमेश्वर का इच्छा का खोज रखता था.
So he was saying that to find God's will, the first part which he does is first of all he wants his mind to be agreement. Like if whatever is God's will, if I'm making a decision, if it's this way or that way, both way I'm ready. That way, when that mind comes to that place, then only he then prays for God's will.
और वो यही करता था कि अपना जो मन है वो परमेश्वर के सामने रखता था कि इस तरफ जाना है या उस तरफ, जहाँ भी जाना है वो परमेश्वर का इच्छा کیا ہے وہ اس کے انوسار ہی وہ مانتا تھا.
بیکاز مینی ٹائمز آئی ہیو مائی سیلف ول,
کافی بار میرا جو اندر کی اچھا ہے,
I want to go in this direction.
اور مجھے اس طریقے سے جانا ہے.
And if I pray, I will get that only.
اور میں یہ پرارتھنا کروں کہ مجھے وہی ملے.
No, if I pray, then I will get that direction only.
اور جب میں پرارتھنا کرتا ہوں تبھی مجھے وہی راستہ پرمیشور دکھائے گا.
Because I have already decided in my heart that this is the way I will go.
کیونکہ میں نے نرنے کیا ہے کہ اس طریقے سے میں جانا چاہتا ہوں.
So till I come to a between place that God, if it is this way or that way, I am ready for both. Then only I can find God's will.
اور جب میں کہتا ہوں کہ پرمیشور سے کہ میں یہ راستہ اور دوسرا راستہ سے بھی میں تیار ہوں, تب میں آ کر کے پرمیشور کی یوجنا کی کھوج کرتا ہوں.
So I believe that God will lead not only in big decision, even in small decisions also God wants to lead.
اور بڑا چیزوں میں نرنے کرنے میں بھی نہیں, لیکن چھوٹا سا چھوٹا میں بھی پرمیشور سہایتا کرتا ہے.
What I want to speak,
کیا میں مجھے بولنا ہے,
whether I need to encourage someone,
مجھے کسی کو اتساہت کرنا ہے,
یعنی whether I need to pray for someone,
کسی کے لیے مجھے جو پرارتھنا کرنا ہو,
whether I need to do something, every way God can speak to us, then when it comes to bigger things, then God will easily, when we can hear it easily.
اور ہر ایک چھوٹے باتوں میں پرمیشور سہایتا کرتا ہے اور باتیں کرتا ہے, اور بڑے چیزوں میں بھی پرمیشور اسی طریقے سے سہایتا کرے گا.
Because when we read in Acts, that many, all of them were led by God's will continually.
ہم پریریتوں کے کام میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ جو ہے پرمیشور کی یوجنا کے انوسار ہی چلایا گئے تھے.
When Philip was in some place, God asked him to go in a desert, Gaza.
اور جہاں پہ ایک فلپ اس کو کہتا ہے کہ تمہیں ریگستان کی طرف, غازہ کی طرف جانا ہے.
When he was going in a desert, then he God asked him to, Holy Spirit guided him to go near a chariot.
اور وہاں پہ پھر واپس پوتر آتما اس کو اگوائی کرتا ہے کہ ایک چیریٹ جو رتھ کے سامنے جانے کے لیے.
سو وین ہی گوز نیئر چیریٹ دین ہی از سینگ دیٹ ہیز دیٹ پرسن از ریڈنگ دا بک آف آئزیاہ ویئر اٹ سیز اباؤٹ جیسس.
اور وہاں پہ ایک ویکتی ہے جو آئزیاہ سے وہ دھیان کرتا ہے.
سو وین دیٹ پرسن از ریڈنگ اباؤٹ آئزیاہ اینڈ اٹ سیز دیٹ آئزیاہ دیٹ بک سیز اباؤٹ سم تھنگ اباؤٹ دا کراس آف جیسس, ہاؤ ہی سفرڈ آن دا کراس, اینڈ ہی از آسکنگ اباؤٹ ہوم, وچ پرسن دس بک دس پرسن از رائٹنگ.
اور جب اس ویکتی سے پوچھتا ہے کہ یہاں پہ وہ کروس کے بارے میں لکھا گیا, یشو مسیح کے بارے میں لکھا گیا, کس کے بارے میں یہاں پہ لکھا گیا.
So he could easily share the gospel with that person and he got converted.
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے وہ اس انگیکار کرتا ہے اور وہ ترنت وہ انگیکار کرتا ہے.
So that is how God led Peter, Paul, everywhere God was always speaking to them.
اور اس طریقے سے پرمیشور اپنے لوگوں کو چلاتا ہے, جیسا پترس کو اور پولس کو چلایا ہے.
سو اف آئی ہیو اے ڈیزائر دیٹ مائی لائف شوڈ آئی ہیو ٹو فلفل گاڈز ول ان مائی لائف,
اگر پرمیشور اگر میرا اندر اچھا یہی ہے کہ میں پرمیشور کا اچھا کو پورا کروں,
آئی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ ایلس بٹ گاڈز ول ٹو بی فلفلڈ ان مائی لائف,
مجھے اور کچھ نہیں لیکن پرمیشور کا اچھا میرے اندر پورا ہو.
اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ آئی کین ہیئر ہز وائس آل دا ٹائم,
اور بہت ہی ضروری ہے کہ اس کے جو آواز کو ہم میں لگاتار اسے سنوں.
فیو ڈیز بیک آئی وانٹ ٹو شیئر واٹ دا انسیڈنٹ ٹک پلیس فیو ڈیز بیک, واٹ ایور
کچھ دن پہلے جو چیزیں ہوئے تھے اس کے بارے میں بانٹنا چاہتی ہوں.
آئی اینڈ مائی سسٹر ہیڈ اے فائٹ,
میرا اور میرے بہن کے بیچ میں لڑائی ہوا.
That when I was doing my max work, she was telling something to me.
اور جب میں اپنا گنتی کا میکس کا جب میں یہ ہوم ورک کر رہی تو تبھی وہ کچھ باتیں کہی.
So I got irritated and told her something. She went and cried.
اور میں نے کچھ باتیں ایسے کہی کہ وہ اسے دکھ پہنچا اور وہ جا کے رونے لگی.
Then I went and asked her sorry. She forgave me.
اور میں نے معافی مانگا تو اس نے مجھے معاف بھی کر دیا.
So I learned even a little thing can hurt someone.
اور میں نے یہ سیکھا کہ چھوٹی سی بات بھی کسی کو دکھ پہنچا سکتا ہے. God's will is something, پرمیشور کا جو اچھا جو ہے, it is something where if I want things to happen in the right way, پرمیشور اچھا وہ ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ سب چیزیں صحیح طریقے سے ہو, یا اگر یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز ہونا ہی ہے, تو پھر اس میں کوئی فائدہ نہیں کہ میں پرمیشور کا اچھا کو جانوں. और वचन बहुत ही स्पष्ट है कि हमारे लिए, हम काफ़ी जगह में हम पढ़ते हैं, शायद उत्पत्ति से लेकर के जब हम आखिर तक जाते हैं, जितने भी लोग थे जिन ने परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चला है उनका अच्छा ही हुआ है। और सबसे एक अच्छा उदाहरण जो है हम यूसुफ के बारे में देख सकते हैं, और इस इच्छा में उसको काफ़ी कुछ उसको सहना भी पड़ा। ऐसा भी नहीं है कि हमें, जैसे भाई ने बताया कि हमें नुकसान सहना भी पड़ेगा, लेकिन उसके वजह से हम पीछे नहीं हटे, लेकिन हम अपने चीज़ को बांध के रखें। और आखिर में हमने देखा गए हफ्ते भी यूसुफ के बारे में कि जो भी हुआ आगे वो परमेश्वर की योजना के अनुसार था, और उस योजना के अनुसार उसके पूरे घर वालों को एक जो विपत्ति के समय में उनको एक आश्रय मिला या जगह मिला जहाँ पे वो जा कर के रह सकते हैं। तो ये एक परिपूर्णता है जो हम ये नहीं सोचते, आज के दिन हमें यही लगेगा कि मेरे लिए ये अच्छा है, दिस इज़ व्हाट इट इज़ गुड, टुडे आई मे फील दैट इट इज़ गुड एंड आई विल लाइक इट, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन क्या ये बात जो है, डस गॉड लाइक इट, लाइक इट्स अगेन something like you know my daughter wants to do something and the father does not know, or in other ways she comes to the father and ask I want to do this, she will get a better decision or better direction. It's something like that, you can compare it to a family life. But when she takes a decision in her own ways, wo apne tarike se jab wo decide karti hai, then something happens, that consequences uska jo hai she has to go and undergo that. Father will not be able to undergo that. That is what a will of God and the way of God is. You know, when we really, you know, just put down ourselves, jab hum puri tarike se apne aap ko parmeshwar ke samukh mein dal dete hain, and God is there always. And for that you don't require an appointment as such, you know, to go into God, like, you know, a time limit, or you know, like I cannot go this time. Like if you have to go to a person, like say even today heavenly father, our spiritual father, we have to see whether he is in a good mood or not, whether he is you know in the right state of mind, whether he'll be able to listen to what I say, he'll give me the right counsel, you have to see that, and whether he's sleeping or awake. But you know, heavenly father is always awake. You can just kneel down and tell, no father, help me, and you'll see the directions rolling down to you. And as brother said, no, the peace inside, you'll feel that peace flowing inside, which I have felt it myself many times. And the third thing also, as brother focused on, was the circumstances. Sometimes, you know, it is very confusing that how am I going to face that. Also comes to a control situation. It's only thing I have to just go and tell, this is what I want, is it your will? That's it.
Praise God for the words God spoke to us.
और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो वचन हमें मिला है, परमेश्वर हमसे बातें किया है।
I was seeing this verse in Mark 4.
मार्क के पुस्तक में चौथा अध्याय में मैंने एक वचन देखा।
It says in 37.
उसका 27 37 में हम देखते हैं वचन में।
There arose a fierce gale of wind and the waves were breaking over the boat so much that the boat was already filling up.
और वहाँ पे तूफान आके खड़ा हुआ और जहाज हिलने लगा और पानी भी भर गया था।
Jesus himself was in the stern asleep on the cushion and they woke him and said to him, teacher, do you not care that we are perishing?
और वहाँ पे उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह सोया हुआ था और वो उन्होंने उसे जगाया और कहा कि क्या आप नहीं जानते कि हम लोग अभी खत्म होने वाले हैं।
Here it says that the boat was already filling up, means the water was already inside the boat.
और यहाँ पे ऐसा लिखा गया कि जो पानी है वो भर रहा था जहाज के अंदर, मतलब पानी जहाज के अंदर था।
So that means that if I was in that situation, I would also panic because water, the boat will sink.
और मैं अगर उस परिस्थिति में रहता तो मैं भी बहुत ही चिंतित हो जाता था क्योंकि जहाज हो डूब सकता था।
But Jesus was at rest.
लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सो रहा था।
He was not bothered that, like, I mean, water has come in, that still he is at rest.
वो उसको कोई चिंता नहीं था कि पानी आ रहा है, लेकिन फिर भी वो आराम कर रहा था।
I believe that Jesus lived every moment of his life in fellowship with his father.
और क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक जो समय उसने पिता के साथ संगति में बिताया अपने पिता के साथ.
So as we as brother spoke about his presence being with us, when his presence is with us, we will always have rest in our heart.
जब परमेश्वर का सम्मुख हमारे साथ है तो हमेशा हमारे हृदय के अंदर वो शांति बना रहेगा.
Whenever I see some unrest coming, I should see whether I am in the presence of God.
जब भी एक चिंतित की बात जब आता है, क्या मैं परमेश्वर के सम्मुख में हूँ या नहीं, वो हमें जानना है.
Maybe in simple things like at home, some tension happens. So am I losing my rest? That is what is important.
जैसे कि घर में जब मैं कुछ चिंता होने की बातें हैं, क्या मैं वो शांति को मैंने खो लिया है क्या नहीं?
When there is unrest, there is all sorts of confusion at home.
जब मन के अंदर शांति नहीं है तो सब तरीके का उलझन घर में है.
So I should first and foremost ask God, Lord, I want to be in your presence and I want to have the rest constantly through the day.
और परमेश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं तेरे सम्मुख में बना रहता हूँ और वो शांति मेरे अंदर बना रहे.
And whenever I lose that rest, I should see what caused that rest to go in my life.
और जब मैं वो शांति मेरे मन से मेरे अंदर से जाता है तो क्या बात है वो अशांति के लिए.
It might be that I spoke rudely to someone or I didn't apologize to someone or I have some bitterness against someone in my heart.
कोई कड़वापन की बात हो सकता है, किसी से मैंने कुछ बोल दिया होगा और मैंने माफी नहीं मांगा होगा.
So God wants, as in Hebrews, if you read, it says that in 4, Hebrews 4, it says in
Hebrew का 4 का
therefore let us the first verse, therefore let us fear if while a promise remains of entering his rest any of you may seem to come short of it.
हिब्रू का 4 का पहला वचन में हम देखते हैं. कि हमें उस शांति को हमें बना रखना है.
सो गॉड्स विल फॉर माई लाइफ इज आई शुड ऑलवेज हैव दैट रेस्ट इन माई हार्ट.
परमेश्वर इच्छा यही है कि वो शांति हमारे अंदर लगातार बना रहना है.
Even when he created Adam, he wanted when he created Adam, after that he wanted Adam to be with God, with him, so that he will have the presence of God in his life before he starts off his life.
और जब आदम को जब परमेश्वर बनाया, वो यही चाहता था कि वो परमेश्वर के साथ हमेशा संगति में बना रहे.
So that he will have that rest constantly through the day, so that his presence will be there with him.
कि लगातार वो उस वो अंदर में वो शांति से बना रहे लगातार पूरा दिन भर.
There are things that take away the rest in my life. Maybe it sometimes it is a lust. Lust means I want something that doesn't belong to me. I want something that I cannot afford, but I want to have it.
कुछ ऐसी बातें जो मेरे मन को खींच लेता है, जैसे लोभ जो है, जो कुछ ऐसे बातें जो मुझे चाहिए जो मैं नहीं पा सकता हूँ.
There's some maybe something that is very expensive.
हो सकता है कि बहुत ही कीमती चीज है, मैं चाहता हूँ.
But I don't have that rest until I have it.
और मेरे अंदर वो शांति नहीं जब तक मुझे वो मिलता नहीं है.
So that lust have to go. I have to ask God to save me from that lust that want to desire something that I don't have.
वो लालसा से परमेश्वर हमें बचाना है, उसे हमें प्रार्थना करना है कि मुझे बचाए.
Those lusts take away the rest in my heart.
और वो जो चीजें, वो जो बातें हैं, ऐसे गुण जो है वो शांति को निकाल देता है मन से.
As brother spoke about self will, that my will is always wanting something, and when I do my will, I'll see the unrest in my heart.
और मेरा जो स्वयं इच्छा जो है और उसके अनुसार जब मैं चीजों को करता हूँ, मेरे अंदर एक अशांति आ जाती है.
Also sometimes it is like I can sense the unrest at home, that my wife is at unrest, so I need to pray that Lord bring rest in this house.
और कभी कभी वो जो चीजें घर की परिस्थिति को बिगाड़ देती है, हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आप वो शांति भरना.
We want to live in peace always.
और हम शांति से हमेशा में रहना है.
And whenever that peace goes, we need to come back to that life of peace and rest.
और जब वो चला जाता है, हमें वापस उस शांति की तरफ हमें बढ़ना है.
Because when we lose a peace and rest, then there's so much of other problems that come along with it.
और जब हम उस शांति को खो लेते, बाकी काफी चीजें हैं जो उसके साथ आता है, उलझने आते हैं.
God wants to when I begin my day itself, Lord, let me live in that rest always through the day. That is what God wants me to have.
और परमेश्वर यही चाहता है कि हम दिन भर हम उस शांति में बना रहे.
Believe that God can do this in my life.
और परमेश्वर मेरे जीवन में कर सकता है, विश्वास हम करें.
Ephesians 5:15.
एफिशियों का 5:15.
Be very careful then.
बहुत ही चौकस रहना.
How you live?
Not कैसे आप रहते हो?
Not as unwise but as wise.
लेकिन अबुद्धिमान जैसा नहीं लेकिन बुद्धिमान जैसे.
Making the most of every opportunity.
और जो भी आपको बातें विषय मिलता है.
Because of the days are evil.
क्योंकि आने वाला दिन जो है बहुत ही बुरे हैं.
Therefore, do not be foolish.
और इसके लिए मूर्ख जैसा मत रहो.
But understand what God's will is.
लेकिन ये जान लो कि परमेश्वर का इच्छा क्या है.
And today, brother Abu shared about the three lights.
और जैसे कि भाई अबू ने तीन बत्तियों के बारे में बताया.
That is a direction for us to find out what God's will is for
और यही एक रास्ता है कि मेरे लिए परमेश्वर ने क्या रखा है.
To make a decision to see if it is God's will through the word.
और जो जब मैं एक निर्णय लेती हूँ क्या वो परमेश्वर का वचन के अनुसार है या नहीं.
To be at peace in my heart.
और मेरे अंदर वो शांत मेरे अंदर वो शांति में मुझे बना रहना है.
Once the decision is made.
एक बार जब निर्णय लेने के बाद.
And if it's not in my control.
और ये अगर मेरा काबू में नहीं है.
God will make the way forward. God will work.
और परमेश्वर सहायता करेगा और चीज़ों को काबू में लाएगा.
लाइक इन एक्सोडस 15.
और जैसे कि हम निर्गमन के 15 में हमने पढ़ा है.
26. Therefore the Lord made a decree and a law for them.
परमेश्वर ने एक नियम बनाया उनके लिए.
And there he tested them.
और वहाँ पे उनका उसने परीक्षा लिया.
He said.
उसने कहा.
If you listen carefully to the voice of the Lord your God.
अगर जब आप परमेश्वर के जो आवाज को जब आप सुनोगे.
And do what is right in His eyes.
और जो उसके दृष्टि के सामने सही होगा वो जब आप करोगे.
If you pay attention to His commands and keep all His decrees.
और उसके आज्ञा को जब आप मानोगे और करोगे.
I will not bring on you any of the disease I brought on Egyptians.
और मैं तुम्हारे ऊपर कुछ भी विपत्तियां नहीं लाऊंगा जो मैंने मिस्र के ऊपर लाया है.
For I am the Lord who heals you.
और मैं वो परमेश्वर है जो चंगाई देने वाला परमेश्वर.
So if we follow the three lights.
जब हम तीन बत्तियों को हम हमारे जीवन में मानते हैं उसके अनुसार चलते हैं.
There's no harm in anything. We will not be harmed.
और हमें कोई हानि नहीं होगा.
If our eyes are focused on Jesus.
जब हमारे जो आंखें जो हैं वो यीशु मसीह के ऊपर जब लगा रहता है.
There's no fear.
कोई डर नहीं होगा.
And I thank God for the word today.
और आज के वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता
हूँ. I've got two more weeks. I'll prepare Mike. Thank you.
I thank God for the verse He spoke to us.
मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जो वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत किया है.
Especially the promise which God gave us, the Exodus 33:14.
और जो वायदा परमेश्वर ने दिया है निर्गमन का 33:14 में.
My presence will go with you and I will give you rest.
और मेरा जो सम्मुख है तुम्हारे साथ जाएगा और मैं तुम्हें आराम दूंगा.
That is the way God want us to guide.
और यही रास्ता है कि इस तरीके से परमेश्वर हमें चलाना चाहता है.
But sometimes the cloud is not staying for a long time in same place.
और बहुत बार जो है जो बादल है काफी समय तक एक ही जगह में नहीं रुकती है.
That's the time we tend to be unrest and do something our own way.
और उस समय हम अपने अनुसार अपने तरीके से हम सोचने लगते हैं करने लगते हैं.
But two years back we were also going through such a situation.
2 साल पहले हम भी एक ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे थे.
That time God spoke to me very specially through one verse.
और एक वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातें की.
2 Corinthians 4:8.
दूसरा कुरिन्थियों का 4:8 में.
We are hard pressed on every side.
हम लोग हर तरीके से दबाए गए हैं.
Yet not crushed.
लेकिन हम नहीं दबे.
We are perplexed.
हाँ और हम लोग चिंतित हो जाते हैं.
But not in despair.
Not
in despair.
लेकिन हम शोकित नहीं है.
That time I was reading that same verse in Message Bible.
और वही वचन को मैसेज बाइबल में पढ़ रही थी.
So that really spoke to my heart.
जो मुझसे मेरे हृदय में बातचीत किया.
We have been surrounded and battered by troubles.
और हमारे चारों ओर जो है बहुत ही संकट से घेरा हुआ है हम.
But we are not demoralized.
और उससे हम लोग हमें दीन नहीं किया गया है.
we are not sure
हमें पता नहीं
what to do
क्या करना है
but we know that God knows what to do
लेकिन हमें पता है कि परमेश्वर जानता है कि क्या करना है
that really encouraged my heart
और ये बातें मुझे बहुत ही उत्साहित किया है
we are not sure what to do
हमें पता नहीं कि हमें क्या करना है
but we know that
लेकिन
God
हम जानते
knows what to do
लेकिन हमें पता है कि परमेश्वर जानता है कि क्या करना है
I also should know that God knows what to do in this situation
और मुझे भी जानना है कि परमेश्वर जानता है कि क्या करना है इस परिस्थिति
में I should be sure about that God knows
लेकिन मुझे वो मेरे अंदर वो भरोसा है भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर जानता है
So yesterday I was reading Jeremiah 29
जरमिया का 29 मैं पढ़ रही थी Jeremiah 29
in that also this people of Israel exiled to Babylon
aur jo misr ke jo log the wo log bandi bana ke leke gaye the Babylon ke taraf
so they were with the people many prophets and diviners many people also there
aur bahut se jo bhavishyataon ko bhi leke gaye the
So all those were only Jeremiah was the true prophet at that time.
और उस समय में सिर्फ जरमाया जो था वही एक सच्चा एक भविष्यवक्ता था.
All others were prophesying falsely to these people.
और वो बाकी जो भविष्यवक्ता बहुत गलत तरीके से वो लोग भविष्यवाणी करते थे.
God will deliver you. God will bring back to you. Very fast. There are many prophecy they were falsely telling to the people and deceiving them.
और वो भविष्यवक्ता ने बहुत गलत प्रकार से प्रचार किया और भविष्यवाणी किया और गलत बातें बताई
so in 29 verse 8 Jeremiah
29 का 8 हम पढ़ते हैं
for thus says the lord of hosts
ऐसा परमेश्वर कहता है
the god of israel
इसराइल का परमेश्वर
do not let your prophets and your diviners who are in your midst deceive you
और जो तुम्हारे बीच में जो भविष्यवक्ता है वो तुम्हें तुम्हें गलत रास्ता ना दिखाए
नो लिसन टू योर ड्रीम्स व्हिच यू कॉज टू बी ड्रीम्ड
और जो आपने सपना देखा है वो उससे आप संतुष्ट मत हो जाओ
व्हाई गॉड इज टेलिंग फॉर दे प्रोफेसी फॉल्सली टू यू इन माय नेम
क्योंकि वो लोग गलत प्रकार से भविष्यवाणी करते हैं मेरे नाम में
आई हैव नॉट सेंड देम सेज द लॉर्ड
और मैंने उन्हें नहीं भेजा ऐसा परमेश्वर ने कहा है
देन गॉड इज टेलिंग टू देम
फिर परमेश्वर कहता है
फॉर दस सेज द लॉर्ड
ऐसा परमेश्वर कहता है
आफ्टर 70 इयर्स आर कंप्लीटेड एट बेबीलोन
जब 70 साल खत्म होगा बेबीलोन में
I will visit you and perform my good word toward you.
और मैं आकर के मिलूंगा और अच्छे बातें मैं प्रकट करूंगा.
And cause you to return to this place.
और वापस तुम्हें लाऊंगा.
So there is 70 years you have to stay in Babylon. Before that, I will not bring you back.
और 70 साल तुम्हें बेबीलोन में रहना है और मैं तुम्हें वापस नहीं लाऊंगा.
That is what God's plan for them.
और यही योजना था परमेश्वर का उनके लिए.
Before that, it won't happen.
और उससे पहले नहीं होगा.
These false prophets are telling you that you will come back, but it won't happen.
लेकिन जो गलत भविष्यवाणी बताने वाले गलत बता रहे हैं कि ये हो जाएगा और आप लोग तुरंत बाहर निकलेंगे. लेकिन ऐसा नहीं होने वाला
in verse 11 that's really encouraged my heart
उस ग्यारहवा वचन में जो जब हम पढ़ते हैं
for I know the plans that I have towards you
और मैं जानता हूं कि मैंने जो योजना तुम्हारे लिए बनाया है
so god has a plan for my life that in each place in for israel it was 70 years they have to be in babylon
israel के लिए ये योजना था कि 70 साल वो उन्हें बेबीलोन में रहना था
that they cannot change
वो बदल नहीं सकते थे
whoever prophesying falsely but it won't change
और वो लोग गलत प्रकार से भविष्यवाणी बता रहे थे लेकिन वो नहीं बदलने वाला परमेश्वर की योजना था 70 साल वहां पे रहना
god knows that plan that god has for them
और परमेश्वर वो योजना जानता था जो उसके उनके लिए बनाया गया था
सो मी आल्सो आई शुड वेट when god is really directing my steps to go forward that time only I should take the step
और मुझे भी रुकना है और जब परमेश्वर मुझे आगे कदम बढ़ाने के लिए कहता है तब तक मुझे रुकना है जब तक वो नहीं बोले
दैट गॉड्स टाइम आई शुड वेट फॉर देम
और परमेश्वर के समय के लिए मुझे रुकना है
बट बिकॉज गॉड नोज द प्लान फॉर माई लाइफ
क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मेरा मेरे लिए क्या योजना है
दैट वे ओनली ही विल लीड मी
और इस तरीके से वो मुझे ले चल सकता
है आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न टू वेट when the cloud is moving till then I need to wait
और मुझे भी वो सीखना है कि मुझे रुकना है, आराम करना है, जब तक वो बादल आगे नहीं जा रहा है तब तक मुझे रुके रहना है।